हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्या क्या कहाँ? रवि की बात पर आदित्य चारों तरफ अपना सिर घुमाकर देखता हुआ बोला। उसे नशे की वजह से सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे लोग कहाँ थे। सर, हम घर, आपके घर पहुँच गए हैं, रवि ने फिर से कहा। ओह हाँ, घर, यहीं पर आने को तो कहा था ना। ठीक है रवि, तुम कार पार्क करके नीचे अपने रूम में सो जाना। बोलते हुए आदित्य लड़खड़ाते कदमों और आंखों में आंसू भरी हुई धुंधली नजरों के साथ कार का गेट खोलकर कार से बाहर निकला और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सर, एक मिनट। कार से बाहर निकलता हुआ रवि आदित्य को आवाज लगाया। अब क्या हुआ, कुछ रह गया है क्या कार में? आदित्य ने थोड़ा उकताकर सवाल किया। जाहिर था कि उसे रवि का इस तरह से आवाज देकर रोकना बिल्कुल रास नहीं आया था। हाँ सर, वो मैम, वो अभी तक कार में ही बैठी हैं। उन्हें आप अपने साथ। रवि आदित्य को ये बात बोलते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था। आदित्य ने इस वक्त सच में बहुत ही ज्यादा पी रखी थी, इसलिए शायद उसे सुनैना का ध्यान भी नहीं रहा। और आज से पहले तो रोज ही वो रवि के साथ या ज्यादातर अकेले ही घर वापस आता था और इसी तरह से सीधे दरवाजे की तरफ जाने लगता था। लेकिन नशे में होने की वजह से वो भूल गया था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और सुनैना भी उसके साथ ही थी कार में, और अब घर में भी उसके साथ ही रहेगी। ओह, तो उसे बोलो ना कार से बाहर आए वो, रवि की बात सुनकर आदित्य ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। लेकिन सर, मैं कैसे? थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? आदित्य की बात पर रवि ने उससे कहा। ठीक है, तुम जाकर गीता दी, घर की मेट से कहो कि सफाई सफाई कर दे और बाकी इंतजाम भी, मैं आता हूँ उसे लेकर। आदित्य ने रवि से कहा और खुद वापस कार की तरफ जाने लगा। रवि ने आदित्य से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन आदित्य आगे बढ़ गया तो रवि ने कुछ नहीं कहा और सीधा घर के अंदर की तरफ ही जाने लगा। हेलो, मेरी ये कार कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है क्या तुम्हें? बाहर आने का मूड है या नहीं? घर पहुंच गए हैं हम। आदित्य झुककर कार के शीशे से अंदर झांककर सुनैना को देखता हुआ बोला। सुनैना वहां बैक सीट पर पता नहीं कौन सी अपनी ही किसी सोच में गुम बैठी थी कि उसे कार रुकने या फिर रवि और आदित्य दोनों के कार से उतरने का पता तक नहीं चला। लेकिन इस तरह अचानक से आदित्य की कार की खिड़की से बाहर से आती हुई आवाज सुनकर सुनैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर हैरानी से अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी, जैसे कि ये सुनिश्चित कर रही हो कि कार सच में रुकी हुई है या नहीं और आदित्य जो बोल रहा है वो सच है या फिर उसके ख्याल में ही चल रहा है ये सब। अब इधर उधर क्या देख रही हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी रात यहाँ नहीं खड़ा रह सकता मैं तुम्हारे लिए, चलो इसलिए चुपचाप अंदर। आदित्य ने दोबारा से काफी रूखी सी सर्द आवाज में कहा और कार की खिड़की से अपना हाथ अंदर करके कार का गेट खोल दिया। कार का गेट खुलते ही सुनैना भी कार से बाहर आ गई। उसने कुछ भी नहीं कहा लेकिन आदित्य की तरफ ही देख रही थी। उसे फिर से आदित्य कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो आदित्य के चेहरे की तरफ थोड़ा गौर से देखने लगी थी और अब शायद वो याद करने की भी कोशिश कर रही थी कि आखिर उसने आदित्य को पहले कहाँ देखा है। मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ और काफी स्मार्ट भी, लेकिन तुम्हें इस तरह से यहाँ खड़े होकर मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफिशियली तो शादी हो गई है ना अब हमारी, जी भर के देखती रहना बाद में, बट पहले घर के अंदर तो चलो। आदित्य सुनैना के इस तरह से देखने पर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ काफी एटीट्यूड से बोला तो सुनैना थोड़ा सा सकपक आ गई और इधर उधर देखने लगी। वो जानबूझकर आदित्य को नहीं देख रही थी और उसने इतना सब तो सोचा भी नहीं था उसकी तरफ देखते हुए। वो तो बस उसे आदित्य का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी सोच में पड़ गई थी। लेकिन आदित्य के इस तरह से टोकने पर उसने तुरंत उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ली और आदित्य के आगे आते हुए उसके पहले ही घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे मेरे लिए तो रुको, आदित्य सुनैना के पास पहुंचकर उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे रोकते हुए बोला। हाँ छोड़ो मेरा, इतनी ज्यादा पी रखी है, होश भी है खुद का या कुछ भी बोलते चले जा रहे हो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। सुनैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए आदित्य की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली। तो उसकी बात का मतलब समझते हुए आदित्य ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। बट देख तो रही थी, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज कोई पहली बार शराब नहीं पी रखी है, इसलिए मुझे पूरा होश है और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पूरे होशो हवास में ही बोल रहा हूँ। बोलते हुए आदित्य थोड़ा तैश में दो कदम सुनैना की तरफ बढ़ा और उसके कदम कुछ कुछ डगमगा गए। वो गिरने ही वाला था, लेकिन फिर खुद ही संभल कर थोड़ी अजीब नजरों से सुनैना की तरफ देखने लगा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितनी ज्यादा होश में हो, सुनैना ने आदित्य की हालत देखकर तंजिया लहजे में कहा और उसे वहीं छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर के दरवाजे पर सुनैना जब पहुंची तो उसने देखा कि लगभग 35-40 साल की एक युवती सादे कपड़े पहने हुए मुस्कुराती हुई हाथ में आरती की थाल और दिया लेकर खड़ी थी। रवि भी उसके साथ ही खड़ा था। हाँ, वो मुस्कुरा तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सामान्य लग रहा था। सुनैना को इस सब की कोई भी उम्मीद नहीं थी और इस तरह की शादी होने के बाद वो सच में ऐसा कोई स्वागत सत्कार चाहती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस औरत का मन रखने के लिए या फिर शायद शादी की एक और रस्म समझकर सुनैना वहीं दरवाजे पर रुक गई और कुछ ही देर में आदित्य भी वहां दरवाजे पर आकर सुनैना के साथ ही खड़ा हो गया। क्या गीता दी, आप भी, इन सब की क्या जरूरत? आदित्य वहां सब आरती और स्वागत का सामान देखकर उस औरत से बोला। अरे, जरूरत कैसे नहीं थी भैया, आखिर भाभी पहली बार जो घर आ रही हैं आपके साथ, उस औरत ने आदित्य की बात काटते हुए कहा। तो फिर आदित्य भी आगे कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप सुनैना के साथ वहीं पर खड़ा हो गया। गीता ने उन दोनों की एक साथ आरती उतारी और सुनैना के पैरों के पास एक कलश में चावल भरकर रख दिए। सुनैना को ये सब काफी अटपटा लग रहा था और वो सबकी तरफ देखते हुए अचानक से रुक गई। अरे, क्या हुआ भाभी, कलश में धीरे से ठोकर मार के गिराइए, हमारे यहाँ पर तो नई बहू का स्वागत ऐसे ही होता है घर में, गीता ने सुनैना को कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हुए काफी प्यार और अपनेपन से कहा। सुनैना ने उसकी बात मानते हुए ठीक वैसा ही किया और घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आते ही आदित्य तेज कदमों से एक तरफ बढ़ गया और किसी से कुछ भी बोलने कहने सुनने के लिए वो वहाँ पर रुका ही नहीं। सुनैना आदित्य के वहाँ से इस तरह से चले जाने पर मुड़कर उसकी तरफ ही देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक आदित्य को ऐसा क्या हुआ कि घर के अंदर आते ही बिना किसी से कोई बात किए या बिना वहाँ पर उन सभी के साथ रुके वो कहीं और ही चला गया। भैया, अभी आ जाएंगे, चलिए जब तक मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, गीता ने सुनैना को उस तरफ जिस तरफ आदित्य गया था उसे पाया तो वो बोली। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस, गीता की बात पर सुनैना थोड़ा देखते हुए बोली तो वहाँ पर पास ही खड़ा रवि भी मुस्कुराने लगा और फिर सुनैना गीता के साथ ही चली गई।
नहीं बस, अब बहुत हो गया, अब मेरे को तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनना है, तुम अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। टखनों तक आती हुई मैक्सी पहने और बालों का कसा जुड़ा बनाकर उसमें जुड़ा पिन लगाए हुए एक अधेड़ उम्र की औरत चेहरे पर एकदम सख्त भाव लाते हुए सामने सर झुकाए खड़ी हुई बेचारी सी दिखने वाली लड़की से बोली। नहीं मारिया आंटी, प्लीज, इतनी रात को इस वक्त मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए और यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगी, मेरा विश्वास करिए। उस लड़की ने उसी तरह जमीन पर नजरें गड़ाए हुए काफी सहमी सी आवाज में बोला। पिछले 2 महीनों से यही सब सुन रही हूँ मैं तेरा, आज दे दूंगी कल दे दूंगे, लेकिन आज तक एक नया पैसा भी किराए के नाम पर नहीं दिया है तूने। वो तो पूजा की सिफारिश पर मैंने तेरे को बिना एडवांस डिपॉजिट के तरस खाकर कमरा दे दिया, तो उसका अच्छा सिला मिल रहा है मेरे को। वो औरत उसी तरह से सख्त भाव के साथ उस लड़की को जवाब देते हुए बोली। उस लड़की ने अब तक अपना नीचा किया हुआ चेहरा उठाकर अब उस औरत की तरफ बड़ी ही दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल रो पड़ेगी। लगभग 24-25 साल की वो लड़की शरीर और चेहरे से तो काफी खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी इस वक्त रोते हुए भी। साथ ही उसकी आंखें तो काफी ज्यादा बड़ी और सुंदर थीं, लेकिन उनमें इस वक्त आंसू भरे हुए थे। उस मासूम लड़की की ऐसी हालत देखकर तो किसी को भी उस पर तरस आ जाता, लेकिन उस औरत को उस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आया। आंटी प्लीज, वो लड़की एक बार फिर काफी उम्मीद के साथ प्रार्थना करने वाले स्वर में उस औरत से बोली। नहीं बोला ना मैं, नहीं तो मतलब अब नहीं, कोई मर्सी नहीं दिखाएगा अब हम तुम पर, और वैसे भी सिर्फ पैसे की बात होती तो हम तुमको कुछ दिन और रह लेने देते, लेकिन पैसे के साथ ही वो लड़के लोग भी अक्सर यहाँ आता जाता रहता है, यहाँ तक कि तुम जब रूम पर नहीं होती हो तब भी वो लोग तुम्हारे बारे में पूछने इधर उधर आता है, और मेरे को ये रोज रोज का लफड़ा नहीं मांगता है अपनी खोली में, बाकी बच्चों लोगों की सेफ्टी का भी तो सवाल है, इसलिए तुम अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मारिया आंटी तो उस लड़की के इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं पिघली और उसे पूरी बात बताते हुए वहां से जाने को बोलकर अपने कमरे की तरफ चली आई और दरवाजा भी उन्होंने अंदर से ही बंद कर लिया, और वो लड़की काफी देर तक वहां पर ही खड़ी रोती रही, शायद इस आस के साथ कि अभी थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन लगभग 1 घंटा बीत गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।